इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विद्याश्री न्यास वाराणसी।
यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है पंडित विद्यानिवास मिश्र का रचना कर्म जन्म शती वर्ष के समापन पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं भारतीय लेखक शिविर पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट। पंडित विद्यानिवास मिश्र जन्म शती वर्ष के समापन के अवसर पर विद्याश्री न्यास लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली, मां भवानी महाविद्यालय चंदौली, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ तथा रजा फाउंडेशन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 13 से 15 जनवरी 2026 को पंडित विद्यानिवास मिश्र का रचना कर्म विषय पर कार्यक्रम वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। आज द्वितीय दिन के कार्यक्रमों में 14 जनवरी दिन बुधवार 2026 पंडित विद्यानिवास मिश्र स्मृति व्याख्यान महाकाव्य विमर्श एवं स्मृति संवाद विषय राम मुझे छोड़ते नहीं और कृष्ण मुझसे छूटते नहीं।
आज 14 जनवरी द्वितीय दिन के व्याख्यान में प्रमुख विषय है पंडित विद्यानिवास मिश्र स्मृत व्याख्यान महाकाव्य विमर्श एवं स्मृत संवाद। इस सत्र में जो प्रमुख हमारे विद्वान बोलने वाले हैं उसमें पंडित रामजी तिवारी सुल्तानपुर से, प्रभाकर सिंह जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, शशिकला पांडे जी, आदरणीय सिद्धानंद जी, आदरणीय सूर्य प्रताप सिंह जी, मीनाक्षी दिनेश कुमार जी और अध्यक्षीय बोधन श्रीमती निर्जा माधव जी का होना है।
साहित्य लोचन, साहित्य लोक एवं आस्वाद एवं भाषा चिंतन, हिंदी समाज और साक्षात्कार एवं डायरी, इन प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित कराया गया। शब्द पारिजात पुस्तक का लोकार्पण भी संपन्न हुआ। लेखिका नीरजा माधव। सम्मानित वक्ताओं ने अपने अपने विचार साझा किए। आज के प्रथम कार्यक्रम के अंतर्गत विषय था राम मुझे छोड़ते नहीं और कृष्ण मुझसे छूटते नहीं।
भाई प्रभाकर जी,
आदरणीय मंच और आप सब जो सामने उपस्थित हैं सबको प्रणाम करता हूं। सबसे पहले जिनकी स्मृति में यह आयोजन हो रहा है उनकी स्मृति को नमन करता हूं। विद्यानिवास मिश्र जी की स्मृति को नमन करते हुए मंच पर आज इस सत्र की अध्यक्षता कर रही आदरणीय नीरजा माधव जी, वरिष्ठ रामजी तिवारी जी, आदरणीय सिद्धानंद जी, शशिकला पांडे जी, विजयन पांडे जी और सामने कई सारे वरिष्ठ लेखक और चिंतक और साथी बैठे हुए हैं, सबको प्रणाम करते हुए जो विषय मुझे दिया गया है मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा, बहुत विस्तार से नहीं रखूंगा। इसमें एक खास बात यह है कि राम कथाओं पे थोड़ा सा काम करने का अवसर मुझे मिला, भारतीय भाषाओं में राम कथा, और उसमें मैंने संस्कृत साहित्य में राम कथा पर काम किया और फिर विद्यानिवास जी को जिस तरह से मैंने पढ़ा और तमाम सारे आलोचकों को जिस तरह से पढ़ा, चिंतकों को, रामकथा के बारे में एक समझ विकसित हुई यह कि रामकथा का मतलब यह है कि भारतीय संस्कृति को जानने के लिए रामकथा को जानना जरूरी है, जिस तरह भारतीय भूगोल को जानने के लिए जीटी रोड को जानना जरूरी है। तो ये दो संदर्भ इस तरह से बनते हैं और रामकथा के बारे में तरह तरह के आपको संदर्भ मिलेंगे, लेकिन जब चिंतकों के बारे में बातचीत हम करते हैं, बड़े आलोचकों के बारे में बातचीत करते हैं, तो भारतीय संस्कृत के बारे में जब बातचीत होती है तो उसमें मुझे लगता है कि जो ये भारतीय संस्कृत की बहुलता है, जिसे तरह तरह की जो संस्कृतियां मिलकर भारतीय संस्कृत का जो निर्माण होता है, उसमें राम कथा को आप एक सूत्र के रूप में देख सकते हैं। राम कथा का मतलब यह है कि जिसमें मुझे जिस किताब को पढ़कर मैं सबसे ज्यादा समृद्ध हुआ रामकथा को जानने और समझने के लिए, वो है कामिल बुल्के की रामकथा। आप जानते हैं कि इसके पहले रामकथाओं पर बहुत सारा काम हुआ था, लेकिन शोध कोश के संदर्भ में अगर आप बातचीत करें तो कामिल बुल्के ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस तरह से रिसर्च किया उन्होंने रामकथा पर, और लगभग 300 रामायणों के बारे में उन्होंने लिखा, और वह पुस्तक प्रकाशित भी है लोक भारती प्रकाशन से, और 300 रामायणों के बारे में जब बातचीत करते हुए उन्होंने लिखा तो ये बताने की कोशिश की उन्होंने उस पुस्तक में, अपने शोध में, कि भारत की जितनी तरह की भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं में रामकथाएं लिखी गई हैं। आप समझ सकते हैं जिसमें तमिल, द्रविड़ संस्कृति, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भाषाओं में रामकथाएं लिखी गई हैं। इसके साथ साथ दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत की तमाम सारी भाषाओं में रामकथाएं लिखी गई हैं, पूर्वोत्तर भाषा में रामकथाएं लिखी गई हैं, और हिंदी और उसकी जनपदीय भाषाएं जिसे हम कहते हैं, आप जानते हैं कि हिंदी बहुत सारी जनपदीय भाषाओं से मिलकर बनती है, उसमें भी बहुत सारी रामकथाएं, बोलियों में जो रामकथाएं हैं, हिंदी का विकास जहां से होता है, अपभ्रंश अवहट से लेकर, विमल सूर से लेकर, स्वयंभू से लेकर, पूरी श्रृंखला आपके सामने आती है, उसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में रामकथाएं हैं, अवधि में रामकथा है, और फिर खड़ी बोली में रामकथा का पूरा एक वितान आपके सामने आता है। इन सारे संदर्भों के बीच में रामकथा पर जब बातचीत होती है तो मुझे लगता है कि जब हम विद्यानिवास मिश्र जी की बातचीत करते हैं तो मुझे कुछ आलोचकों की श्रेणी जो नजर आती, जिसमें मैंने कामिल बुल्के का नाम लिया आपके सामने, ग्रियर्सन ने भी रामकथा पर काम किया है तुलसीदास के हवाले से, और इसके साथ साथ जो लोक में राम की व्याप्ति है, भारतीय संस्कृत का जो लोक है उसमें जो राम की व्याप्ति है, उसमें जिन लोगों ने काम किया है उसमें विश्वनाथ त्रिपाठी से लेकर विद्यानिवास मिश्र, इन सबका नाम मैं ले सकता हूँ।
काव्य पाठ मीनाक्षी दिनेश कुमार नोएडा से आप पधारी थीं, आपने प्रस्तुत किया।
बड़े भाई बाबूजी के तरह होते हैं हमारे लिए, बड़े भाई की छाया जब हमारे सर पर होती है तो ऐसा लगता है कि पिता की छाया हमारे सर पर है। तो एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहती हूँ बाबूजी के ऊपर। आजकल मेरी ये कविता बहुत सुन रहे हैं लोग, मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, सुनिए। आड़ी तिरछी हर मुश्किल का, आड़ी तिरछी हर मुश्किल का हल होते हैं बाबूजी, आड़ी तिरछी हर मुश्किल का होते हल हैं बाबूजी, नम आंखें हो कितनी पर खुशियों के पल हैं बाबूजी, नम आंखें हो कितनी पर खुशियों के पल हैं बाबूजी। और बंच में अगर आप तालियों का साज देंगे तो मेरे गीत को अर्थ मिल जाएगा, सुने। छो आंखों का हो कोई चश्मा या छोटा सा एक खिलौना, आंखों का हो कोई चश्मा या छोटा सा एक खिलौना, ये जीवन पथरीली राहे बाहें उनकी नरम बिछौना, ये जीवन पथरीली राहे बाहें उनकी नरम बिछौना।
अध्यक्षीय वक्तव्य नीरजा माधव ने दिया।
हमारे अत्यंत श्रद्धास्पद प्रोफेसर रामजी तिवारी जी, जिनका बहुत ही वैदुष्यपूर्ण उद्बोधन हम लोग सुन रहे थे राम और कृष्ण के ऊपर, जो आदरणीय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के साहित्य में व्याप्त है, और राम काव्य पर ही, राम कथा पर ही बहुत ही विद्वत्तापूर्ण उद्बोधन प्रोफेसर प्रभाकर जी का, और उनकी स्मृतियों से संवाद कर रहे थे प्रोफेसर श्रद्धानंद जी और डॉक्टर शशिकला पांडे जी, और अभी बहुत सरस काव्य पाठ बाबू जी पर, और यहाँ जो हमारे सबके स्वामी हैं विश्वनाथ जी पर सुन रहे थे मीनाक्षी जी। यहाँ सभागार में उपस्थित काशी के प्रबुद्ध जन, विशेष रूप से दिल्ली से पधारी हुई हमारी छोटी बहन की तरह से नूतन पांडे, लखनऊ से अमिता जी, और दिल्ली से ही, दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हुए प्रोफेसर वत्स जी, यहाँ छात्र छात्राएं हैं और साहित्यकार हैं हमारे नगर के, आदरणीय नरेंद्र मिश्र जी हैं, कविंद्र जी हैं, अत्रि भारद्वाज जी हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेने में समय ज्यादा हो जाएगा, समय का दबाव है। सबसे अंत में लेकिन बहुत ही एक आदर भाव के साथ मैं डॉक्टर दयानिधि मिश्र जी, जो चाचा जी हैं, उनको प्रणाम करती हूँ इस पूरे आयोजन के लिए कि जिस मनः स्थिति में वे थे, अगर घर का कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रिय सदस्य अस्पताल में हो और एक दिन पहले वो वहां से डिस्चार्ज होकर आए और उसके बाद इतना बड़ा आयोजन करना, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, उनके भ्रातृ प्रेम को प्रणाम करती हूँ।
और संचालन एवं संयोजन विजयेंद्र पांडेय का था। इसके पश्चात साहित्य लोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संचालन संयोजन प्रीति त्रिपाठी का था।
अब चलते हैं हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की तरफ, अर्थात मध्यकालीन कविता की ओर। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे मध्य दिल्ली से पधारे श्री वेद प्रकाश वत्स जी हैं, जिनका विषय है मध्यकालीन कविता के अनूठे व्याख्याता। उम्मीद है इस व्याख्यान से हमें मध्यकालीन कविता को समझने की नूतन विचार सरणियां प्राप्त होंगी। आदरणीय वत्स जी,
जहां बाबा विश्वनाथ साक्षात विराजमान हैं, जहां माँ गंगा साक्षात हैं, जहां संकट मोचन विद्यमान हैं और जहां मानस मंदिर है, ऐसे इस मानस मंदिर के प्रांगण में, ऐसे इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी में पहुंचकर मैं स्वयं को अभिभूत महसूस कर रहा हूं। मेरा यह पहला अवसर है इस आध्यात्मिक नगरी से परिचय होने का, और मैं इस परिचय को जब विस्तार देता हूं तो जिनके सम्मान में, जिनकी स्मृति में और जिनके योगदान में यह कार्यक्रम है और जिनके नाम में ही विद्या निवास करती है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं सबसे पहले। और वो महर्षि, वो संत आत्मा जिनके नाम में दया है और जो दया की निधि है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि ऐसे आयोजनों की संकल्पना योजना करना बहुत दुष्कर कार्य है। मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूं आप सभी के बीच कुछ दो बातें रखने का, मुझे जो आपने अवसर दिया, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। सम्मानित मंच जिसकी अध्यक्षता आदरणीय अनंत जी कर रहे हैं, जहां अष्टभुजा जी बैठे हैं, जहां सामने अभी नीरजा जी का अध्यक्ष उद्बोधन हमने सुना है, वहां कुछ बात कहना स्वयं में ही गौरव की बात होती है। हम बालक हैं, कुछ सीख रहे हैं। उसी क्रम में जब मध्यकालीन कविता के संदर्भ में मैंने विद्यानिवास मिश्र जी के चिंतन को थोड़ा सा समझने झांकने का प्रयास किया, तो मैंने पाया कि जिस सांस्कृतिक चेतना की बात हम करते हैं, उसके अंत है सूत्रों को विद्यानिवास मिश्र जी पकड़ते, ढूंढते, बुनते चलते हैं।
अध्यक्षीय वक्तव्य अष्टभुजा शुक्ल ने दिया। भाग लेने वाले थे गोप बंधु मिश्र, सुशील कुमार पांडे, श्री राम परिहार, भारती गोरे, श्री प्रकाश मिश्र, वेद प्रकाश वत्स, के एन तिवारी और प्रभात मिश्र। इसके पश्चात साहित्य लोक और आस्वाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। संचालन एवं संयोजन सोनी पांडे और अध्यक्षीय वक्तव्य अनंत मिश्र ने दिया। भाग लिया बलिराज पांडेय, मनीषा खटाटे, के एन सिंह, समरजीत यादव, माधवेंद्र पांडेय, राजेंद्र खटाटे। तत्पश्चात भाषा चिंतन, हिंदी समाज साक्षात्कार एवं डायरी कार्यक्रम संपन्न हुआ। संचालन संयोजन पूजा यादव एवं अध्यक्षीय वक्तव्य दिलीप सिंह ने दिया। भाग लिया चित्रंजन मिश्र, सत्यदेव त्रिपाठी, अवधेश प्रधान, राजकुमार उपाध्याय, मणि एवं प्रकाश उदय। अभी आप आज दिनांक 14 जनवरी दिन बुधवार 2026 को वाराणसी में आयोजित पंडित विद्यानिवास मिश्र का रचना कर्म जन्मशती वर्ष के समापन पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं भारतीय लेखक शिविर कार्यक्रम के द्वितीय दिवस पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग वाचन एवं संपादन सिद्धार्थ सेन, प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार पांडेय, प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी से हो रहा था।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे विद्या श्रीन्यास वाराणसी।